हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। माँ माँ, क्या हुआ आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरे पापों का घड़ा भर गया है बेटा, मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल गई है। अब तो इस पापी शरीर को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। बस एक ही आखिरी इच्छा है कि इस देह को त्यागने से पहले एक बार तुमसे मिल लूँ, अपनी बेटी को प्यार कर लूँ, तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ, फिर ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। निराशा के गहरे समुद्र में डूबी सी उनकी आवाज़ आई, जैसे अब उनके पास जीने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। धृति इस तरह की बातें सुनकर घबरा गई। कुछ अनिष्ट होने की आशंका से उसका मन हौल गया। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। आप बताइए मुझे, कहाँ हैं आप? मैं अभी आपके पास पहुँच रही हूँ। मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, धृति ने हड़बड़ी में उठते हुए कहा। बहुत घबरा गई थी वो, और डर से उसका शरीर ढीला पड़ने लगा था। माँ से लाख नाराजगी थी, पर उन्हें खोने के ख्याल से ही उसकी आंखें भीग गई थीं। दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया और धृति तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। घर के सदस्यों से लेकर नौकर तक सब आराम करने गए थे, और वो बड़ा सा मैंशन बिल्कुल खाली पड़ा था। अजीब सा सन्नाटा पसरा था हर जगह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी है। धृति तेजी से बाहर निकली। गैरेज में गई तो वहाँ कोई ड्राइवर ही नहीं था। धृति बदहवास सी गलियारे से होते हुए बाहर वाले मेन गेट की तरफ भागी। वहाँ गेट के पास 4-5 गार्ड खड़े थे, बाकी सब शायद लंच करने गए हुए थे। धृति को वहाँ देखते ही गार्ड अलर्ट हो गए। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर जाइए, अर्णव सर ने किसी को भी घर से बाहर जाने से मना किया है। गेट कीपर ने धृति को मेन गेट के साइड वाला छोटा गेट खोलते देखकर उसे टोका। धृति, जो पहले ही बहुत परेशान थी, उनके यूं रोकने से गुस्से से उस पर भड़क उठी। मैं आपके अर्णव सर की कैदी नहीं हूँ, जिसे वो अपने सोने के महल में कैद रखें। गुलाम नहीं हूँ मैं उनकी कि उनकी मर्जी से हर काम करूँ। मुझे अभी और इसी वक्त घर से बाहर जाना है। दरवाज़ा खोलिए। मैडम, सर ने मना किया है, अगर उन्हें पता चला तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उस गेट कीपर ने डरते हुए धृति को अपनी मजबूरी बताई, और धृति की आंखों से चंद आंसू फिसलकर फर्श पर बिखर गए। और अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरी माँ की जान चली जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अभी जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊँगी। आपके अर्णव सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज़ मुझ पर तरस खाइए और मुझे अभी यहाँ से जाने दीजिए। मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं वक्त पर उनके पास नहीं पहुँची तो वो मर जाएंगी, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। धृति गुस्से में चीख भी रही थी और उनके आगे गिड़गिड़ा भी रही थी। उस गार्ड को उसकी हालत पर तरस आने लगा था, पर अर्णव के ऑर्डर के खिलाफ जाने पर उसके गुस्से का खौफ भी हावी था। कुछ देर यूं ही बहस के बाद धृति खुद छोटा दरवाज़ा खोलकर वहां से निकल गई, और वो उस पर बल का प्रयोग भी नहीं कर सके। सभी गार्ड उसे अकेले जाते देखकर घबरा गए। गेट कीपर ने दो गार्ड्स को उसके पीछे भेजा और खुद अर्णव को फ़ोन लगाने लगा, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद अर्णव मेंशन के लॉन में खड़ा था, और गार्ड ने उसको सारी बात तफसील से बता दी थी। अर्णव का चेहरा एकदम सपाट था, पर आंखें खूनी रंग में रंगने लगी थीं। उसके गुस्से को भांपते हुए सब गार्ड्स की डर के मारे हालत खराब होने लगी। उनमें से एक अर्णव के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया और घबराते हुए बोला, सर, हमने मैडम को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो हमारी सुन ही नहीं रही थी। उन्हें जबरदस्ती रोकने में भी हम असमर्थ थे। हमने तो कहा था कि आपसे पूछ लें, फिर जाने देंगे उन्हें, पर उन्होंने ये कहकर ऐसा करने से मना कर दिया कि वो कैदी नहीं, कि आपकी इजाज़त लेकर कहीं जाएं। मैडम रो रही थी, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। हमें लगा कुछ बड़ी बात हुई है, इसलिए फिर हमने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। मैडम खुद से बाहर निकल गई थी, कुछ दूर हम उनके पीछे भी गए, पर पता नहीं मैडम अचानक कहाँ गायब हो गई थी। हमने आसपास हर जगह उन्हें ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। आपको इन्फॉर्म करने के लिए फोन भी किया था, पर आपका नंबर नहीं लग रहा था, और घंटे भर बाद मैडम खुद ही वापस आ गई थी। तब भी वो काफी दुखी लग रही थीं। धृति के जाने से बाद से लौटने तक की सारी बात उसने संक्षेप में अर्णव को बता दी। सबने मिलकर अर्णव से माफी भी मांगी, और अर्णव ने उन्हें काम पर जाने को कह दिया। पर कुछ तो था जो उसके दिमाग में खटक गया था, और चेहरे पर सख्त भाव लिए उसने कदम अंदर की ओर बढ़ा दिए थे। अर्णव ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, कमरे में पहले से मौजूद धृति खुशी से चहकते हुए उसकी ओर बढ़ गई। अर्णव जी, आप आ गए, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? आपको पता है मैंने कितना मिस किया आपको। आज के दिन तो आपको मेरे पास रहना चाहिए था। धृति बड़े ही मोहब्बत से उससे शिकायत कर रही थी। अर्णव ने भरपूर नज़र उसके वजूद पर डाली, और परिणाम स्वरूप उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। इतने में धृति तेजी से उसके पास चली आई और उससे लिपटी ही थी कि एक झटका सा लगा अर्णव को। ये स्पर्श, ये खुशबू धृति की तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसा व्यवहार वो कर ही नहीं सकती थी। उनका रिश्ता भी जिस मोड़ पर था, धृति तो उसे एक नज़र देखना पसंद नहीं करती थी, पर ये बात सिर्फ वो दोनों जानते थे। वो पहचानता था धृति के लम्स को, जो उसे बेचैंगी के साथ करार भी पहुँचाता था। उसकी भीनी भीनी सी खुशबू उसकी सांसों को बहकाती थी और वो खुशबू आज भी उसकी रूह को महका रही थी। पल भर को अर्णव जड़वत हरा रह गया। मन ही मन पूरी घटनाक्रम को दोहराया। फिर अचानक ही उसके दिमाग में बिजली जैसे ख्याल कौंधा और उसके सेंस जाग उठे और दिमाग तुरंत ही हरकत में आया। अगले ही पल उसकी पेशानी पर बल पड़ गए और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। उसकी गहरी काली स्याह आँखें और गहरी हो गईं और चेहरे पर सख्त भाव उभर आए। उसने मुट्ठी धृति के बालों पर कस ली और उसने बड़ी ही बेरहमी से उसके बालों को पकड़कर पीछे की ओर खींचते हुए उसे खुद से अलग कर दिया। धृति कहाँ है? क्या किया है तुमने उसके साथ? अर्णव की गुस्से भरी भारी भरकम तेज कर्कश आवाज उस कमरे में गूंज उठी। धृति, जो अचानक उसके यूं बदले रवैये को देखकर हैरान थी और बालों के खिंचने से दर्द से बिलबिला उठी थी, उसका सवाल सुनकर पहले तो बुरी तरह सकपका गई, फिर चेहरे पर दर्द के भाव लाते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप अर्णव जी? मैं ही धृति हूँ, आपकी वाइफ। धृति ने इतना कहा ही था कि अर्णव गुस्से में चीख पड़ा, झूठ, तुम मेरी धृति नहीं हो सकती। मैं उसके लम्स और खुशबू को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तुम उसके तरह दिखती जरूर हो, पर उसकी परछाई तक की बराबरी नहीं कर सकी। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम धृति नहीं सृष्टि हो। इसलिए अपना रचा ये झूठा खेल यहीं खत्म करो, क्योंकि तुम इस चेहरे से दुनिया को धोखा दे सकती हो, पर अर्णव सिंह रायजादा को बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम धृति नहीं, उसकी जुड़वा बहन सृष्टि अवस्थी हो, और अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सच सच बताओ मुझे कि धृति कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी और कोसोगी तुम उस पल को जब तुम्हें इस घर में कदम रखने की गलती की थी। अर्णव गुस्से में गर्जा, उसकी आंखों में खून उतर आया था, चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, माथे और बाहों की नसें तन चुकी थीं। वो इस वक्त गुस्से से भरा भयावह दानव लग रहा था और उसकी दहाड़ से वो कमरा भय से कांप उठा था। पल भर के लिए धृति का रूप ढले खड़ी सृष्टि भी घबरा गई, पर जल्दी ही संभल गई और मासूम इनोसेंट सी शक्ल बनाकर उलझन भरे स्वर में बोली,
अर्णव जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी समझाता हूँ मैं तुम्हें। अर्णव ने घुमाकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और सृष्टि लड़खड़ाते हुए चंद कदम पीछे खिसक गई। वो तो गिर ही गई होती, पर ऐन वक्त पर अर्णव ने उसकी बाह पकड़ते हुए उसे गिरने से बचाया और गुस्से से दहाड़ा। अब समझ आया कि क्या बोल रहा हूँ मैं? सृष्टि दर्द से सिसक उठी। एक तो गाल पर इतना जोरदार थप्पड़ लगा था कि अब भी कान में सीटी बज रही थी और गाल पर जलन सी हो रही थी। उस पर अर्णव ने उसकी बाह को जल्लादू जैसे कसके पकड़ा हुआ था, पर अब भी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अर्णव के हाथ से अपनी बाह को आज़ाद करते हुए सिसकने लगी, मुझे नहीं पता आप ये क्या बातें कर रहे हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम नहीं मानोगी कि तुम धृति नहीं सृष्टि हो? अर्णव ने गुस्से में उसके जबड़े को दबोचते हुए दांत किटकिटाए। उसकी उंगलियां सृष्टि के गालों पर गड़ने लगीं, पर अब भी वो अपनी जिद पर अड़ी रही और उसके हाथ को अपने चेहरे पर से हटाने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। मैं धृति हूँ, मैं आपकी पत्नी धृति हूँ, पर पता नहीं आज आपको क्या हो गया है, क्यों मेरे साथ ऐसे जानवरों जैसा सुलूक कर रहे हैं, क्यों मुझे तकलीफ पहुँचाते हुए बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, क्यों आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। एक बार फिर उसको वही झूठ दोहराकर इनोसेंट बनते देखकर अर्णव का खून खौल उठा और उसने उल्टे हाथ का एक करारा तमाचा उसके मुँह पर दे मारा। एक बार फिर सृष्टि के कदम लड़खड़ा गए और इस बार अर्णव ने नहीं संभाला उसे और वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरी। इस दौरान उसका सर सेंटर टेबल के कॉर्नर से लगा और उसके मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। सृष्टि ने अपनी हथेली से अपने सर को छुआ तो हथेली पर सुर्ख रक्त की बूंदें चमक उठीं। अभी वो संभली भी नहीं थी कि अर्णव ने उसकी बाह पकड़कर झटके से उसको खड़ा किया और उसके माथे पर बंदूक तान दी। सृष्टि के होश फाँकता हो गए। वो फटी आंखों से अचंभित सी उसे देखने लगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बहुत सब्र कर रहा हूँ, पर इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, इसलिए मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अगर अपनी जान से रत्ती भर भी प्यार है तो सच सच बताओ कि धृति कहाँ है, क्योंकि तुम धृति नहीं, ये मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। टू बी कंटिन्यूड। क्या करेगी सृष्टि, सच कबूल करेगी या अर्णव को इंसान से जल्लाद बनने पर मजबूर करेगी? और धृति कहाँ गायब हो गई?